श्री कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों का श्रवण करो। सुभद्रा, जिनके श्रवण मात्र से जिनके केवल श्रवण मात्र से ही हृदय के सारे अभद्र दूर हो जाते हैं, जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, और जीवन के अंत में जो सबसे बड़े दुख का सामना करना है मृत्यु, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। इसीलिए प्रिय परीक्षित महाराज, ध्यान पूर्वक बैठकर नित्य क्रम से भगवान के लीलाओं का श्रवण कीजिए। श्री प्रभुपाद को एक बार भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी देखिए, आपका यहां प्रचार आरंभ होकर कितना समय हो गया, लेकिन रोज आप अपने लेक्चरों में यही बता रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, ये क्या है? आगे भी कुछ बोलिए, कुछ लीलाओं का वर्णन कीजिए। प्रभुपाद ने कहा, इतना बोलता हूं फिर भी तुम समझते नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? रोज मुझे ये बोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि माया शक्ति इतनी प्रबल है। बल्कि जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, ऐसे ऐसे लोगों को इस विषय में बता रहे थे जो पूरी तरह नशे में उन्मत्त थे, और वो बैठकर प्रभुपाद के प्रवचन को सुनते और प्रभुपाद कह रहे थे, तुम शरीर, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, आई एम नॉट द बॉडी आई एम द सोल, तो वहां उपस्थित हिप्पियों को लगता कि शायद स्वामी जी अपनी बात कर रहे हैं, वो शरीर नहीं है वो आत्मा है। लेकिन हम तो शरीर ही हैं, क्योंकि सारे सुख हम शरीर के माध्यम से ही भोग रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का ये सबसे पहला शिक्षा है, और यहां से लेकर अंत तक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का ज्ञान, ये सब कुछ एक ही श्रीमद् भागवत के अंदर हमें प्राप्त हो जाता है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, यद उत्तम श्लोक यशो नुगीयते। रम्यम रुचिरम नवम नवम, बार बार एक ही कथा को सुनो तो हर बार एक नया आस्वादन मिलता है। तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, मन में ये बहुत ही सुंदर उत्सव है। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, जो दुखों के सागर में हम डूब रहे हैं, उस दुखों के सागर को ये सुखा देता है, क्योंकि ये सूर्य के समान है। कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञानादि भी सह, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। तो श्रीमद् भागवत के तपती हुई किरणों के सामने यदि हम आकर बैठ गए और ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास तक भी किया, तो हृदय के अंदर दुखों का सागर एक ही क्षण में सूख कर हवा में उड़ जाएगा, ये आश्वासन मिलता है हमें इस श्रीमद् भागवत से। और देखिए, यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा में आकर ध्यान पूर्वक नहीं भी सुने, केवल आकर बैठे और आकर बीच बीच में झपकी भी लग जाए, तो कोई बात नहीं, उसका भी लाभ मिलेगा। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर डेली वेजेस पे लोगों को लगाता है, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत काम करते हैं, लेकिन कुछ लेबरर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम से जी चुराते हैं, यहां वहां छुपते रहते हैं, लेकिन शाम के समय कॉन्ट्रैक्टर सबको सबको तो वेतन देना ही पड़ता है। तो चाहे किसी ने काम किया हो या ना किया हो, उनको वेतन तो मिलता ही है। उसी तरह यदि आप यहां आकर बैठ भी गए और दो ढाई तीन घंटे तक आपका ध्यान नहीं भी लगा, भगवान सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, नोट कर रहे हैं कौन आए कौन नहीं आए, और उनके अकाउंट में जो भी है वो फॉरवर्ड कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। भगवान सोचते हैं, चलो सोने भी आए तो कम से कम इतना कष्ट किया यहां आकर सोए, घर पे नहीं सोया, घर पे सोते तो कुछ नहीं मिला, तो कम से कम यहां आकर सोए, इतना कष्ट किया इसीलिए इनके ऊपर विशेष कृपा करें, चलो इनके अकाउंट में कुछ आगे भर दें। तो एक है यमराज जो अपने हाथ में बैठकर एक अकाउंट ले रहे हैं, और दूसरे भगवान कृष्ण वो अपने हाथ में लेकर अकाउंट देख रहे हैं। हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि कृष्ण की डायरी में हमारी एंट्री ज्यादा हो और धीरे धीरे करके यमराज अपने पेन को बगल में रख दे, बोले ये तो भगवान कृष्ण का पूरा शरणागत भक्त है, इसके निकट जाएंगे तो बड़ी समस्या होगी, जैसे यमदूतों को हुई जब वो अजामिल के निकट गए, जिसके विषय में चर्चा करेंगे कल। बोलिए कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री गौरनाथ राघवनाथ स्वामी महाराज की, नीताय गौर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तजनों का इस श्रीमद् भागवत पारायण के छठे दिन पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण का उद्देश्य है हृदय का शुद्धिकरण, और इस शुद्धिकरण के फलस्वरूप भगवान के भक्ति का हमारे हृदय में उदय। अहो अहो भीर नकलेर विदूयते सुधा सुधा राम मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस गीयते। कलयुग में प्रत्येक दिन हमारे जीवन में कई प्रकार के समस्याएं होती हैं। सुधा सुधा राम मधुरम पदे पदे, यदि हम अपने कर्ण रंध्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण करें, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोदिशमलम कृष्ण सलिलस्य यथाशरत, तो भगवान श्री कृष्ण की ये सुंदर लीलाएं हमारे हृदय का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करती हैं, जैसे बरसात के मौसम में वर्षा ऋतु में जब पानी बरसता है तो जितनी भी नदियां हैं वो धीरे धीरे स्वच्छ हो जाती हैं। दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते, यशो यशोदा तनयस्य, यशोदा तनयस्य अर्थात यशोदा के पुत्र अर्थात कृष्ण, यशो अर्थात उनके गुणगान, यशो यशोदा तनयस्य गीयते, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यदि श्रवण करेंगे तो क्या होगा, दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण जैसे जैसे आप इन सुंदर लीलाओं का श्रवण कीजिएगा तो आपके हृदय में ऐसी शीतलता का अनुभव होगा जैसे दिने दिने चंदन चंद्र। भौतिक जगत में भगवान ने अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है, लेकिन उन सभी वस्तुओं में सबसे शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं चंदन और चंद्र। तो जैसे चंदन और चंद्र हमारे तन को शीतलता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की ये मधुर लीलाएं जो आप श्रीमद् भागवतम के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, आपके हृदय के भौतिक इच्छाओं की अग्नि को शांत करेंगी, और जब भगवान का कथामृत आपके हृदय में पहुंचेगा धीरे धीरे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, आपका हृदय शीतल या शांत और ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए नित्य क्रम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, और ऐसे श्रवण मात्र से हम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। यदि आप रोज बहुत प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ और काफी चेष्टा के साथ, स्वचेष्टितम श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यम, यदि प्रत्येक दिन हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे और ऐसे श्रवण में हम कुछ चेष्टा करेंगे अर्थात कुछ मेहनत करेंगे, कुछ अधिक ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। बहुत ही शीघ्र कालेन न अति दीर्घेन, दीर्घेन अर्थात बहुत लंबे समय के पश्चात, कालेन न अति दीर्घेन अर्थात बहुत ही शीघ्र भगवान विशते हृदि, भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को पूरी जोर के साथ आपके हृदय में प्रवेश पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भक्तों को बड़ी श्रद्धा के साथ उनके लीलाओं का श्रवण करते हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। जैसे हमारे और आपके विषय में कोई तीसरा व्यक्ति कोई गुणगान करे तो हमारी कुछ इच्छा होती है उसके विषय में सुनने की, उसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने अर्च विग्रह के रूप में विराजमान है और देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है और प्रत्येक क्षण देख रहे हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। क्या हम पूरी श्रद्धा के साथ और तल्लीनता के साथ इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं अथवा नहीं? इसीलिए हमें चाहिए कि पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी तल्लीनता के साथ हम इन कथाओं का श्रवण करें, क्योंकि इससे हृदय का शुद्धिकरण होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई दवा दिया जाए तो दवा का उद्देश्य होता है बीमारी को दूर करना, उसी प्रकार कृष्ण कथा का उद्देश्य है कि हृदय के अंदर भवरोग को दूर करना। इसीलिए कहा गया है निवृत्त तर्षै रूप गीयमाना भवौ सदा चोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराजेत विना पशुग्नात्। श्री कृष्ण के कथा के विषय में बताया गया है निवृत्त तरशैर उपगीयमाना भव औषधा, भव औषध भव रोग के लिए ये सबसे उत्तम और उपयुक्त औषधि है कृष्ण कथा। भवौषधात क्षोत्र मनोभिरामात, और ये औषधि ऐसी है कि बड़ी मीठी भी है, बहुत स्वादिष्ट भी है, इसे हम अपने कर्णों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। भवौषधात क्षोत्र मनोभिरामात, मन अभिरामा अर्थात मन को बहुत आनंद देता है, और का उत्तम श्लोक गुणानुवादात तुमान विराजित पशु विना पशुनाथ। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होता? वो जो अपनी आत्मा का भला नहीं चाहता, जो अपने आत्मा का शत्रु है, जो अपने आप का शत्रु है, वो भगवान की कथाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होता। भगवान की कथाएं जहां होती हैं वहां पर वो आता नहीं, बहाने बनाता है और दूर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, और ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति पर जितना शोक किया जाए उतना ही कम है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का नित्य क्रम से जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे उसका भगवत धाम जाना पूरी तरह से निश्चित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे या श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी पूरी तरह श्रद्धा के साथ श्रवण करे वो राजसूय यज्ञ करने के बराबर है। तो यदि आप यहां पर एकत्रित होकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ भगवान की इन कथाओं का श्रवण करेंगे तो आपका बहुत अधिक लाभ होगा। और जहां तक दवा का प्रश्न उठता है, दवा तो दवा है, काम करेगी ही। यदि कोई पेशेंट सोया हुआ है और उसे दवा दिया जाए, एक बार दवा अंदर जाती है तो दवा तो काम करेगी चाहे वो जागे या सोए। तो भले आप बैठें लेकिन उतना ध्यान न दें, क्योंकि श्रीमद् भागवत की ये शब्द ध्वनि आपके कर्णों के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है। आप ध्यान न भी दें तो भी इसका लाभ मिलता है, तो आप ध्यान दें तो कितना लाभ मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि ध्यान दें, श्रवण करें पूरे ध्यान के साथ, तो इससे न केवल आपको इसका लाभ मिलेगा लेकिन श्रीमद् भागवत की इस कथा का रस का असली आस्वादन भी प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज के रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार। तो आप सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आप यहां पर आकर श्रीमद् भागवत के इस शब्द ध्वनि को ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ बड़े प्रेम के साथ सुन पा रहे हैं। जहां तक कथावाचक का प्रश्न उठता है वो तो केवल एक लाउड स्पीकर के समान है, जो भी ध्वनि आए श्रीमद् भागवत से वो आप तक पहुंचे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदे न कीर्तनीया सदा हरि। कोई भी कथावाचक श्रीमद् भागवत का तब तक कथा नहीं कर सकता जब तक वो इस चेतना में न रहे कि मेरी कोई योग्यता नहीं है। तृणादपि सुनीचे न, घास के तिनके से भी नम्र होकर, तरोरपि सहिष्णु न, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, अमानी न, अपने आप को कोई मान सम्मान न देना और न दूसरों से अपने मान सम्मान की अपेक्षा करना, कीर्तनीया सदा हरि, दूसरों को मान सम्मान देंगे तब हम भगवान श्री कृष्ण के इन संदेशों का ठीक तरह से कीर्तन कर सकते हैं। तो कथावाचक केवल एक पोस्टमैन की तरह है जो आप तक उचित संदेश पहुंचाता है। यदि किसी ने आपको दिवाली की ग्रीटिंग भेजी है, लिखा है हैप्पी दिवाली या हैप्पी बर्थडे, तो पोस्टमैन लाकर आपको वो पहुंचाता है। तो जब पोस्टमैन लाकर आपको टेलीग्राम या ग्रीटिंग कार्ड देता है, आप पोस्टमैन को आलिंगन करोगे? नहीं, आप जानते हो कि पोस्टमैन तो बस पोस्टमैन है, लाकर हमको ग्रीटिंग कार्ड और टेलीग्राम दिया है। यदि आपका कोई रिश्तेदार 501 रुपए मनी ऑर्डर भेजता है तो आप पोस्टमैन के पैर पड़ोगे, पोस्टमैन को आलिंगन करोगे, कहोगे आप बड़े कृपालु हो इतने पैसे भेजे आपने? तो नहीं, मैंने नहीं भेजे, ये मेरे नहीं है, मेरे तनख्वाह से नहीं कटने वाले, ये किसी और ने भेजा है, आपके रिश्तेदार ने, मैं तो लाकर आपको दे रहा हूं, मैं तो केवल एक संदेश वाहक हूं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो श्रीमद् भागवत पर कथा करते हैं उनकी अपनी कोई योग्यता नहीं होती, और कथावाचक को इसी चेतना में रहना चाहिए, तब श्रीमद् भागवत का ठीक प्रकार से श्रवण और कीर्तन हो सकता है। तो इसके साथ हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद पर चर्चा आरंभ करेंगे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर प्रकार से श्रीमद् भागवत का तात्पर्यों का वर्णन किया है, और ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सेट उपलब्ध है, और हम जो भी यहाँ पर कथा कर रहे हैं केवल इन तात्पर्यों के आधार पर कर रहे हैं, इन किताबों में जो है बस उसी को दोहरा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के कई वर्ष श्रीमद् भागवत की रचना में लगा दी, श्रीमद् भागवत के ट्रांसलेशन अनुवाद और उनके तात्पर्यों का वर्णन इतनी सुंदर प्रकार से इतने प्रेम से किया है कि कोई भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा या ध्यान पूर्वक घर में बैठ के पठन करेगा तो श्रील प्रभुपाद की संपूर्ण परिश्रम जो इस भागवत के अंदर स्थित है उसका लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जो इसका पठन या श्रवण करेगा। तो छठे स्कंद श्रीमद भागवत का आरंभ तब होता है जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। पांचवें स्कंद के अंत में वर्णन यूं आता है कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी अनेकानेक नरक लोकों का वर्णन करते हैं। 14 लोक हैं और 14 लोक में अलग अलग प्रकार के जीवन के स्तर हैं। ऊपर के लोकों में भोग के साधन हैं, नीचे के लोकों में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं और ऐसे लोगों को वहां भेजा जाता है जो बड़े पापी होते हैं। तो नीचे के लोक होते हैं पाताल, सुतल, अतल, वितल, महितल, तलातल। तो ये 7 लोक नीचे के, यहां पर पापी जीवों को भेजा जाता है और उनके नीचे यम लोक है जहां यमदूत अनेकानेक लोगों को अलग अलग प्रकार से कष्ट देते हैं। तो पांचवें स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी इन लोकों का वर्णन करते हैं। वो ऐसे ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें लगता है कि जो भी हम पाप और पुण्य कर रहे हैं उसका कोई साक्षी है कि नहीं। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई साक्षी अवश्य है, भले हम उसे देख पाए या नहीं। तो बताया जाता है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसे एक ऐसे नरक लोक में भेजा जाता है जिसका नाम है कुंभी पाक। कुंभी पाक नरक में ऐसे जीव के सूक्ष्म शरीर को जलते हुए तेल में गर्म किया जाता है, उबाला जाता है और इससे उसको इतना त्रास, इतना कष्ट होता है कि वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन यमदूत उस पर अपनी कृपा नहीं बरसाते, उसे बुरी तरह कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति अवैध स्त्री संग करता है, व्यभिचार करता है, उसे एक ऐसे नरक लोक में भेजा जाता है जिसका नाम है तप्त सूरमी और इस तप्त सूरमी में उसे एक ऐसे गर्म लोहे के मूर्ति से आलिंगन करने पर विवश किया जाता है। गरम लोहा जलता हुआ और वो स्त्री के रूप में होता है और ऐसे गरम लोहे के एक मूर्ति से उसे आलिंगन करना पड़ता है। तो हम सोच सकते हैं कि कितना कष्ट होगा। जो व्यक्ति मद्यपान करते हैं, नशा करते हैं, उन्हें ऐसे नरक लोक में भेजा जाता है जिसका नाम है अयहपान, जहां यमदूत उसके मुंह को फाड़ कर खोलते हैं और जोर से उसके मुंह के अंदर गरम गरम जलता हुआ लोहा उसके मुंह के अंदर डालते हैं जिसे उसे पीना पड़ता है। तो कितनी वेदना हो सकती है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह 28 नरक लोकों का वर्णन आता है जिसके विषय में हमने एक नोट्स भी तैयार किया, जो लेने के इच्छुक हों उसे देख सकते हैं। ये सारी बातें मनगढ़ंत नहीं, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन आता है और अनेक नरक लोकों का वर्णन आता है। जैसे जो दूसरों के धन को छल के साथ ऐंठे उसे सारदमेय अर्थात ऐसे नरक लोक में भेजा जाता है जहां पर खौफनाक कुत्ते होते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर होते हैं और ऐसे वज्र के समान कठोर दांतों के साथ ये कुत्ते बद्ध जीवों के अंतड़ियों को चीर फाड़ कर उसे प्रेम से चबाते हैं। तो सोच सकते हैं कितनी वेदना हो सकती है। तो सोचिए मत कि यहां पर किसी हॉरर फिल्म के विषय में चर्चा हो रही है, ये नरक लोकों का वर्णन है, श्रीमद् भागवत से पूरी तरह प्रामाणिक है। लेकिन इतना सब वर्णन सुनकर भी लोगों के मन में ये विचार होता है कि शायद ये वर्णन प्रामाणिक नहीं, और वो फिर भी डरते नहीं और सोचते हैं कि चलो हम अपनी इंद्र तृप्ति चलाए रखते हैं। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि शिल प्रभुपाद के गुरु हैं, वो एक कथा सुनाया करते थे इसके विषय में कि एक व्यक्ति रास्ते में शराब पीता हुआ जा रहा था, नशा किया था उसने, और ऐसे उन्मत्त अवस्था में वो चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिल गए। साधु ने उसको कहा कि देखो, तुम पूरी तरह नशे में धुत हो, तुम जानते हो तुम नरक में जा सकते हो। उसने कहा, नरक क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। बोले, नरक बहुत भयंकर है, और यही सब वर्णन उनको सुनाया तो घबरा गया। बोले, अच्छा नरक में जाऊंगा, अच्छा एक बात बताओ, मैं अकेला नहीं पीता, जब भी पीता हूँ अपने मित्रों के साथ पीता हूँ, उन सबका क्या होगा। उन्होंने कहा, सभी नरक में जाएंगे। बोला, अच्छा देखिए स्वामी जी, ये बताइए, कभी कभी मैं इसके साथ मांसाहार भी करता हूँ, उससे क्या होगा। बोला, उससे तो शत प्रतिशत नरक में ही जाओगे, और कहाँ जाओगे। बोला, लेकिन मैं वो भी अकेला नहीं करता, वो भी अपने मित्रों के साथ ही करता हूँ। बोले, सारे मित्र और तुम अवश्य शत प्रतिशत नरक जाओगे इस कार्य के लिए। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी एक और संशय है, वो ये कि कभी कभी मैं द्यूत क्रीड़ा या जुआ भी खेलता हूँ, क्या ये चलता है, क्या इससे मैं पापों से मुक्त होऊंगा। का अरे मूर्ख, ये तो बहुत बड़ा पाप है, इससे तुम दूसरे प्रकार के नरक में जाओगे, और उसका वर्णन बताया। तो उसने कहा, ये काम भी मैं अकेला नहीं करता स्वामी जी, मित्रों के साथ करता हूँ। स्वामी जी ने कहा, सारे मित्र और तुम सभी वहां नरक में जाओगे। फिर अंतिम समय उस व्यक्ति ने स्वामी से प्रश्न किया कि देखिए, कभी कभी मैं वैश्याओं के पास भी जाता हूँ तो क्या होगा। बोला, अवश्य तो तुम नरक में जाओगे ही, और वो सारी वैश्याएं हैं वो भी नरक में जाएंगी। लेकिन स्वामी जी, मेरे साथ जो मित्र कभी कभी जाते हैं उनका क्या होगा, वो सभी नरक में जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए स्वामी जी, यदि सभी लोग नरक में जाने वाले हैं तो मैं भी नरक में ही चलता हूँ, जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वही काम वही करूंगा, उसमें क्या है, इसमें डरने वाली क्या बात है। तो लोगों को लगता है कि नरक में जाना बहुत आसान है, और क्योंकि सभी पाप कर रहे हैं, सब घूमते घूमते साथ साथ सभी नरक में जाएंगे, और जो यहाँ पर भोग की विधि चल रही है यही सारे भोग के काम हम नरक में करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। नरक का असली वर्णन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में दिया है, जिसके विषय में हमने अभी संक्षिप्त रूप में चर्चा की। विस्तृत रूप में जो जानना चाहे 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय को देख ले। तो इन खौफनाक वर्णन को सुनकर परीक्षित महाराज घबरा गए। परीक्षित महाराज के हृदय में दया की भावना उठ गई। परीक्षित महाराज ने सोचा कि भौतिक जगत में तो 99% लोग ऐसे पाप कार्यों में जुटे हुए हैं, और यदि ये लोग इस तरह के पाप करते रहें तो ये सभी नरक में जाएंगे, तो क्या होगा उनका। तो उस समय परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न किया कि हे राजन, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि इन नरक लोक में जो बद्ध जीव जा रहे हैं, क्या इन नरक लोकों से बचने का इनका कोई उपाय है कि नहीं। क्या भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है कि ये नरक लोक से बच जाएं? क्या ये सनातन काल के लिए नरक लोक में सड़ते रहेंगे? क्या इनके बचाव का कोई उपाय नहीं? क्या ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते? उस समय सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भक्तों का यह लक्षण होता है कि पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देखकर भक्त बहुत दुखी होता है और मन में विचार करता है कि भौतिक जगत में दुखी लोगों को किस तरह मैं सुख प्रदान करूं। परीक्षित महाराज के प्रश्न से यही तात्पर्य उभर कर आता है। देखा जाए तो भौतिक जगत में नरक लोकों में जाना बड़ा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि देखिए, मांसाहार करना हो तो उसके लिए धन चाहिए, मांस कोई फ्री में नहीं मिलता। यदि किसी को मद्यपान करना हो, शराब पीनी हो, तो उसके लिए भी धन चाहिए, उसके लिए भी बहुत कमाना पड़ेगा, तब जाकर हम इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। वैश्याओं के पास संग करना हो, अवैध स्त्री संग करना हो तो भी धन चाहिए, और जुआ खेलना हो उसके लिए भी धन चाहिए। धन चाहिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत करने के बाद इतना धन कमाएंगे तब जाके इस धन से पाप कर्म कर पाएंगे, और जब पाप कर्म करेंगे तब नरक में जाएंगे। तो सोचो, नरक में जाना कितना कठिन काम है, इतना मेहनत करना पड़ता है तब जाके नरक में जा पाते हैं। लेकिन भगवत धाम जाना हो तो कितना आसान है। यहां पर आने की कोई फीस है? कोई फीस नहीं, मुफ्त में आओ, आराम से आओ, बैठो। यहां आने का क्या चार्ज है? बस आप थोड़ा समय निकालो, हृदय में थोड़ी श्रद्धा रखो। कोई धन नहीं, कुछ नहीं, बस आने जाने का खर्चा आपको देना पड़ता है और कुछ नहीं। लेकिन यहां पर आकर बैठो, श्रवण करो, और बस भगवत धाम का टिकट आपका कट जाता है। भगवत धाम जाना कितना आसान है, कितना सस्ता है। नरक जाना देखो कितना महंगा है। कितना धन कमाओ और उस धन से पाप करो, और उस पाप करने के बाद फिर आप नरक जाओ, तो इतनी मेहनत क्यों करो नरक जाने के लिए? नहीं, जो धन आप कमाओ उस धन का सदुपयोग कैसे करें ये जानना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करना अति आवश्यक है। तो परीक्षित महाराज के हृदय में यही प्रश्न उठा कि नरक लोक में जितने बद्ध जीव सड़ रहे हैं, उन्हें कष्ट का अनुभव हो रहा है, वो अपने कष्टों से कैसे दूर हो सकते हैं? कृपा करके मेरे संशय का समाधान कीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे परीक्षित महाराज, आपने जो ये प्रश्न किया बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति असली प्रायश्चित का मार्ग समझ जाता है। वो कहने लगे, प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायण परान्मुखम् न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरकुंभ इवापगा। प्रायश्चित करने के अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन प्रायश्चित के ये अलग अलग मार्ग किसी काम के नहीं। क्यों? प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायण परान्मुख, क्योंकि भगवान श्री नारायण से विमुख हैं, परोन्मुख हैं। और इसीलिए इसका क्या फल प्राप्त होता है? न निष्पुनन्ति राजेंद्र, कोई शुद्धिकरण हृदय का नहीं होता। जिस तरह सुरकुंभ इवापगा, यदि एक मटके के अंदर मदिरा हो, मटके के अंदर मदिरे को बाहर से आप पानी से कितना भी धो, क्या वो मटका शुद्ध होगा? नहीं। बाहर से चाहे मटके को कितना भी सेंट मारो, उस मटके के अंदर से मदिरा की दुर्गंध ही आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर मदिरा भरी हुई है। जब तक अंदर भरे हुए कचड़े को आप बाहर नहीं उठाकर फेंकोगे, तब तक अंदर जो बात है वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को स्पष्ट रूप से कहते हैं, केचित केवले आभक्त्या नारायण परायण। केवल वासुदेव नारायण के प्रति भक्ति करोगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। क कैसे? अगम धुनवंती कार्ष्णेय निहारम इव भास्कर। अगम धुनवंती कार्ष्णेय, हृदय के अंदर जितने भी पाप हैं वो तुरंत एक ही क्षण में दूर हो जाते हैं, जैसे यदि चारों तरफ धुंधला हो और उस धुंध में आपको कुछ दिखाई न पड़े, लेकिन जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय के होते ही साथ जितनी भी धुंध है वो तुरंत दूर हो जाती है। अघम धुनवंती कार्ष्णेय निहारम इव भास्कर। उसी तरह हृदय के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का उदय होता है, तो हृदय के अंदर जितने भी पाप कर्म छिपे हुए हैं वो सारे पाप कर्म तुरंत उड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हृदय के अंदर जितना भी अंधकार है वो कृष्ण भक्ति से प्रकाशमान हो जाता है, असली ज्ञान में हम स्थित हो जाते हैं और हम भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से अनुभव करने लगते हैं। तो हृदय के अंदर के पापों को दूर करने का केवल एकमात्र उपाय है, ये सुखदेव गोस्वामी महाराज का मत है, इसके ऊपर दूसरे किसी का मत अधिक बहुमूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज तो पहले से ही आत्माराम पुरुष थे। परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीतरे जा राजर्षे आख्यानं तान अधीतवान। सुखदेव गोस्वामी महाराज पहले ही हृदय के सारे कल्मशों से पूर्ण रूप से मुक्त थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के प्रति वो आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाओं में इतना रस है, इतना आनंद है कि वो अपने आप को रोक नहीं सके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि शिला व्यास देव के पुत्र हैं, जब उनका मत श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं तो उस मत के ऊपर दूसरा कोई मत अधिक बहुमूल्य नहीं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज का ये कहना था कि जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते तब तक हम हृदय का शुद्धिकरण पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, केवल बाकी तरह के प्रायश्चित के मार्ग बाहरी रूप से कुछ समय तक हमें पाप कर्मों के फल से बचाएंगे, लेकिन अंततः पूर्ण रूप से शुद्धिकरण आपको चाहिए तो केवल कृष्ण की भक्ति। और कृष्ण की भक्ति कैसे करें? कलयुग में केवल एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज इस विषय में, इस संदर्भ में परीक्षित महाराज को इतिहास के आधार पर एक कथा सुनाने लगे। वो कहने लगे कि कन्याकुब्ज नाम के स्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। देखिए, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनने से हृदय के अंदर जितने भी कलमश हैं वो दूर हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के नाम की रुचि बढ़ेगी और हृदय में भक्ति धीरे धीरे विकसित होगी। तो इस कथा के सुनने के कई बहुत सुंदर और शक्तिशाली लाभ हैं, तो कृपा करके ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। तो कन्याकुज नाम स्थानक में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल, और अजामिल अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लगा हुआ था और ऐसे पापों से वो बहुत धन कमा रहा था और वो धन किस लिए कमा रहा था? उसके अनेकानेक संतानें थीं, उन संतानों की देखभाल में वो इस धन को लुटा देता। और ये संतानें उसे किससे प्राप्त हुई? उसकी एक वैश्या पत्नी के रूप में उसे स्वीकार की थी, और केवल उस वैश्या की आसक्ति में वो अलग अलग प्रकार से धन कमाने लगा। ब्राह्मणों के जितने भी कर्तव्य थे, उन सभी कर्तव्यों को उसने त्याग दिया था। हर प्रकार के पाप कर्म जिसके विषय में हम सोच सकते हैं, उन पापों को वो करता था। अजामिल जब 80 के ऊपर साल का हो गया, 88 साल का हो गया, तब उसका एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का उसने नाम रख दिया नारायण। और वो अपने पुत्र नारायण से बहुत ही आसक्त था और नारायण को प्रसन्न करने का हर प्रकार से प्रयास करता था। नारायण कभी उठता तो कभी बैठता, कभी उसके निकट आता तो कभी उससे दूर जाता। हर परिस्थिति में अजामिल नारायण से बहुत आसक्त रहता। दिन रात उसके ही संग में वो अपना समय बिताता। कभी वो नारायण को अपने हाथों से खिलाता, कभी वो नारायण को अपने हाथों से पानी पिलाता। कभी कहता नारायण यहाँ आ जाओ, कभी कहता नारायण तुम वहां जाओ, कभी कहता नारायण सो जाओ, कभी कहता नारायण उठ जाओ। इस तरह से उसका 24 घंटा केवल नारायण के संग में व्यतीत होता, क्योंकि वो अपने पुत्र नारायण से बहुत अधिक आसक्त थे। लेकिन नारायण के साथ आसक्त होने पर भी उसने अपने पाप कर्म नहीं त्यागे। वो पाप कर्मों में लगा हुआ था। और देखते ही देखते एक दिन ऐसा हुआ कि उसके मृत्यु का क्षण आ गया। और जब उसका मृत्यु का क्षण आया, तब उसने अपने आंखों के सामने एक बहुत खौफनाक दृश्य देखा। उसने देखा कि मृत्यु के क्षण उसके सामने 3 भयंकर लोग आ गए। 3 ऐसे भयंकर खौफनाक व्यक्ति जिनका उन्होंने पहले कभी न कभी वर्णन सुना था, न कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ऐसे खौफनाक लोगों का भी अस्तित्व हो सकता है। और उन्होंने देखा कि सदृष्ट्वा हस्तत्रीन त्रिष्ट्वा पुरुषान अति दारुणान वक्त्रतुण्डान ऊर्ध्वरोन्मा आत्मानं नेतुमागतान वक्त्रतुण्डान ऊर्ध्वरोन्नो। उनके शरीर पर जो 3 खौफनाक व्यक्ति आए थे, उनके शरीर पर जितने भी रोमांच थे, बाल थे, वो इस तरह खड़े थे वक्त्र तुंडान। और उनके चेहरे को देखकर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बुरी तरह घबरा जाता। और आत्मानम नेतुमागतान, उनके आत्मा को लेने के लिए, अजामिल के आत्मा को लेने के लिए वो 3 वहां पर आए थे। और उनके हाथ में क्या था? हस्त त्रीन दृष्ट्वा, उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के रस्सियां थीं, और उन रस्सियों से वो अजामिल के आत्मा को लेने आए थे। जब मृत्यु होती है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाती है। तो ये 3 यमदूत वहां पर आए केवल अजामिल के सूक्ष्म शरीर को वहां से खींच कर ले जाने। और उनके हाथ में रस्सियां थीं, जिन रस्सियों से वो अजामिल को बांध कर खींच कर ले जाना चाहते थे। तो उस समय जब अजामिल ने जब इन 3 लोगों को देखा, तो उसे देखकर वो पूरी तरह घबरा गए। जैसे हमने पहले ही बताया, यमदूतोतदा प्राप्तो भीमौ सर्वसेक्षणौ। उनकी आंखें इतनी भयंकर लाल लाल होती हैं कि उन आंखों को देखकर कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा। लोग कलयुग में विशेष रूप से आजकल हम देखते हैं कि पैसे देकर लोग हॉरर फिल्म देखने जाते हैं, जहां पर खौफनाक दृश्य हो, भयंकर भयंकर अलग अलग आकृतियों में लोग स्क्रीन पर आते हैं। लोग 20 रुपए 30 रुपए देकर 3 घंटा ऐसे दृश्य देखना चाहते हैं, पता नहीं कैसा आनंद आता है, समझना बड़ा कठिन है। और जब स्क्रीन पर ऐसे खौफनाक लोग आते हैं तब आंख बंद कर लेते हैं, तो जिसे देखने के लिए गए वो नहीं देखते, लेकिन पैसे दिए हैं यही देखने के लिए। और लोगों के हृदय में ये इच्छा होती है कि किस तरह कोई हमें डराए, जिससे अलग प्रकार का एक आनंद हो। तो वास्तव में ये हॉरर फिल्म की इच्छा आती कहां से है? क्योंकि पिछले किसी न किसी जन्म में प्रिय यमदूतों का पाला पड़ा होगा हमारा, तभी तो ये आइडिया आता है, नहीं तो ये आइडिया आएगा कहां से? तो ये स्पष्ट है। तो वास्तव में देखा जाए तो जो पापी व्यक्ति है अलग अलग प्रकार से पाप करे, मृत्यु के समय जो हॉरर सीन देखने को मिलेगा वो फिल्म नहीं होगा, वो असलियत होगा, वो स्पष्ट होगा और आपके आंखों देखा हाल होगा, और उसमें हम ही हीरो होंगे, क्योंकि हमें लेने के लिए वो आएंगे यमदूत। इसीलिए जब यमदूतों का यहां पर वर्णन पढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान करे हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति न आए जो अजामिल की आई। इसीलिए हम नित्य क्रम से 4 नियमों का पालन करके भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।